ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला कार्यक्रम दक्षिण सेतु। शोध आलेख और सूत्रधार हैं तरुण विजय।
दक्षिण सेतु जनगण जोड़े भारत के मन से, दक्षिण सेतु जनगण जोड़े भारत के मन से, दक्षिण सेतु जोड़े उत्तर दक्षिण के गगन से, दक्षिण सेतु जनगण जोड़े भारत के मन से। वीर तपस्वी कवियों से परिचय का कथा कथन है, संस्कृति और शौर्य भरा ये अद्भुत स्वर मंथन है। दक्षिण से तू जनगण जोड़े भारत के मन से।
नंद्री वणक्कम, नमस्कार। दक्षिण सेतु के इस नए संस्करण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। अब तक आप हमारे पिछले प्रसारणों में महान संत तिरुवल्लुवर, अवैयार, आंडाल, कन्नगी, वीरांगना, वेलु नाचियार, कित्तूर की रानी चेनम्मा और श्री नारायण गुरु की महान गाथाओं का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। आपके पत्र, टिप्पणियाँ, आपके फोन हमारा अपार उत्साह बढ़ाते हैं। तो श्रोताओ, इस बार प्रस्तुत है केरल के क्रांतिकारी समाज सुधारक, दलितों में स्वाभिमान और समानता के संघर्ष हेतु साहस भरने वाले महात्मा अयंकाली की प्रेरक गाथा। यह उस समय के केरल की कथा है जब अनुसूचित जाति के हिंदुओं का मुख्य मार्गों पर चलना तक प्रतिबंधित होता था। न केवल उनका मुख्य मार्गों से चलना प्रतिबंधित था, बल्कि उनकी महिलाओं को कमर के ऊपर वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी और तथाकथित उच्च जाति के लोगों से उन्हें निश्चित दूरी बनाकर चलना पड़ता था। छाया तक से परहेज करने वाला समाज था। उदाहरण के लिए, नायर समाज के लोग यदि रास्ते पे जा रहे हों तो अनुसूचित जाति के पुलियार को 64 कदम पीछे चलना पड़ता था, और यदि नायर समाज से भी तथा कथित ऊंचे कहे जाने वाले नंबूदरी ब्राह्मण उस रास्ते पर जा रहे हों तो अनुसूचित जाति के लोगों को 168 कदम पीछे चलना पड़ता था। विद्यालयों में उनके बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता था, तो वे अच्छी नौकरी कहां से पाते? विकास और समृद्धि के सब रास्ते उनके लिए बंद थे। पूजा पाठ के लिए उन्हें मंदिरों में प्रवेश तक संभव नहीं होता था। वे या तो अलग मंदिर बनाए या घर पर ही अपनी आध्यात्मिक प्यास पूरी करें। 19वीं सदी के प्रारंभ में यह वातावरण था, एक विषाक्त भेदभाव युक्त वातावरण। इसे बदलने के लिए अनेक प्रयास हुए। उनमें श्री नारायण गुरु का भक्ति और समानता का आंदोलन बहुत लोकप्रिय और सफल रहा। हमारे प्रिय श्रोताओं को यह याद होगा कि हमने दक्षिण सेतु के पिछले संस्करण में श्री नारायण गुरु की इसी गाथा को प्रसारित किया था। अयंकाली भी प्राय श्री नारायण गुरु के समकालीन थे, बल्कि यह कहा जाए कि उन पर श्री नारायण गुरु की वाणी और कार्यों का बहुत असर था, तो यह ज्यादा उचित होगा। हाँ, दोनों ने समाज में समानता स्थापित करने और जाति पर आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए जो महान प्रयास किए, वे कुछ अलग अलग रास्तों से होकर गुजरे। समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के योद्धा महात्मा अयंकाली का नाम वास्तव में काली था। उनके पिता का नाम अयन था, तो अयन के पुत्र काली को कहा गया अयंकाली, और कालांतर में समाज में परिवर्तन लाने वाले अयंकाली गांधी जी की तरह महात्मा के नाते समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित हुए, तो उनका नाम हो गया महात्मा अयंकाली। पूज्य पिता अयन और ममता भरी माँ माला उनकी पहली संतान थे काली। उनका जन्म 28 अगस्त 1863 को तिरुअनंतपुरम के निकट वेंगनूर गांव में हुआ था। तब वहाँ त्रावणकोर रियासत थी और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत त्रावणकोर के महाराजा राज्य करते थे। वे स्वभाव से बहुत प्रजावत्सल और सुधारवादी थे। अयंकाली का जन्म पुलियर अनुसूचित जाति में हुआ था और तुलना में उनका परिवार बाकी पुलियर परिवारों से कुछ बेहतर था। बेहतर इस अर्थ में कि एक सहृदय जमींदार ने इनके पिता को खेती के लिए कुछ जमीन दे दी थी, लेकिन कृषक के नाते काम करना और चारों ओर अस्पृश्यता के एक गहरे चुभने वाले वेदना देने वाले वातावरण में रहना, यह वह समय था जब उत्तर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज उठा था। मंगल पांडे क्रांति की अलख जगा उठे थे। स्वामी विवेकानंद की हिंदू धर्म की महानता के बारे में सिंह गर्जना विश्व में गूंजने लगी थी। श्री नारायण गुरु की ख्याति भी फैलने लगी थी। उस तमाम वातावरण का असर अयंकाली पर कैसे ना होता। उन्होंने अपने मित्रों के साथ केरल में व्याप्त जाति भेद की विभीषिका के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। विद्रोह का अंकुर फूटने लगा था। दिन भर खेतों में काम करते और रात्रि में अलाव जगाकर अपने मित्रों के साथ जाति के शिकंजे और उसके दुख, उससे जन्मी वेदना और आक्रोश, उन पर गीत रचते भी और गीत गाते गाते उनके हृदय की जो पीड़ा थी वह स्वर लहरी में बह निकलती। मन का कुछ आक्रोश बाहर बहता तो मन को कुछ संतोष भी होता और दिशा भी मिलती। मन में संकल्प जगता कि अब ये सहन नहीं करना है, इस माहौल को बदल कर ही रखना है। गीतों के माध्यम से उनकी आवाज समाज में गूंजने लगी। 10 तरुण आपस में मिलते तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस भाव में अत्याचारों के खिलाफ उनके हृदय अधिक सशक्त होते, मन में व्याप्त वेदना कम होती और समाज को संगठित कर इस सड़ गल चुकी व्यवस्था को समाप्त करने की हिम्मत जुटती। उसमें से जन्मा एक नया संकल्प। अयंकाली ने तय किया कि जिन मार्गों से तथाकथित उच्च जाति के नायर और नमूद्री ब्राह्मण चलते हैं, वे उसी मार्ग पर नायर की वेशभूषा पहनकर चलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 बैल और 1 बैलगाड़ी खरीदी। बैलों के गले में पीतल की बड़ी घंटियां बांध दी और फिर नायर की वेशभूषा में सर ऊंचा करके छाती ठोक कर उस बैलगाड़ी को चलाना शुरू किया और कहा, जैसे तुम हो वैसा मैं हूं, फिर मुझे इस रास्ते पे चलने से तुम कैसे रोक सकते हो। नेदुमंगर नामक स्थान में वे मुख्य बाजार में अंग वस्त्रम और पगड़ी धारण कर तथा कथित उच्च जाति की वेशभूषा पहनकर गए, सामान खरीदा और उन तथा कथित उच्च जाति के लोगों के अहंकार को चुनौती दी। जिस साहस और आत्मविश्वास के साथ अयंकाली चलते, तुरंत उनको रोकने का साहस भी कोई नहीं कर पाता था। जिन लोगों ने रोका था वे अयंकाली की इस आग्नेय वाणी के सामने ठहर नहीं सके। धीरे धीरे केरल के अन्य क्षेत्रों में, नगरों में, गांवों में पुलेर एवं अन्य अनुसूचित जाति के लोग इसी प्रकार के प्रदर्शन करने लगे और तथाकथित सवर्णों के एकाधिकार को चुनौती देने लगे। अनेक स्थानों पर इस तरह के प्रदर्शनों पर हमले हुए। कड़कोटम नामक स्थान पर ऐसे ही पुलेर प्रदर्शन पर तथाकथित सवर्णों का भारी हमला हुआ। काफी हिंसा हुई, सैकड़ों दलित घायल हो गए। विडंबना यह रही कि इस घटना को चलियर दंगे कहा गया। धीरे धीरे मनकरू, कड़कूरम और कन्यापुरम जैसे राजधानी के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में भी इस प्रकार के प्रदर्शन फैलते गए और उन पर हमले भी बढ़ते गए। जितने हमले बढ़े उतना ही पुलियर और अन्य अनुसूचित जाति के लोगों का संकल्प भी बलवान होता गया। उनके हृदय की शक्ति बढ़ने लगी, उनका आत्मविश्वास उनकी चाल में, ढाल में, उनकी वाणी में झलकने लगा। 1900 का वर्ष आते आते केरल के अधिकांश मार्गों पर पुलेर जाति के लोगों को चलने का अधिकार मिल गया। फिर भी जो मार्ग मंदिर की ओर जाते थे उन पर अभी भी उनका कदम रखना भी प्रतिबंधित था। अयंकाली ने कहा, यह भी अधिक दिन तक नहीं चलेगा। 4 वर्ष बीत गए। 1904 आते आते अयंकाली समस्त केरल में सुधारवादी क्रांतिकारी नेता के नाते प्रतिष्ठित हो गए थे। उन्हीं दिनों उन्हें एक महान हिंदू संत अय्यवु स्वामीगल के प्रवचन सुनने का अवसर मिला। उन दिनों ईसाई मिशनरी बहुत बड़ी संख्या में दलित हिंदुओं को धर्मांतरित कर रहे थे और अय्यवु स्वामीगल जाति भेद मिटाकर हिंदू दलितों के धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे थे। अयंकाली का स्पष्ट मत था कि हिंदू समाज में सुधार करके ही जाति भेद को मिटाया जा सकता है, धर्मांतरण समाधान नहीं है। उन्होंने स्वामी जी से प्रेरणा लेकर वेंगनूर में अपने मित्रों के साथ ब्रह्म निष्ठा मठम की स्थापना की। उद्देश्य था कि अपने समाज में जाति भेद हम दूर करेंगे, अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी धर्म निष्ठा और संस्कृति निष्ठा में दृढ़ करेंगे, क्योंकि मत परिवर्तन करना समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मत में व्याप्त कुरीतियां, रूढ़ियां और अंधविश्वास दूर करना यह उचित मार्ग है। अयंकाली का मत था कि पुलियर समाज को शिक्षा और विकास के रास्ते पर डाले बिना जाति भेद का संतरास दूर नहीं हो सकता। हालांकि उस समय कुछ पुलियर शिक्षित होने लगे थे और उनमें से ज्यादातर कॉलोनियल मिशनरी सोसाइटी और लंदन मिशनरी सोसाइटी के स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन दुख इस बात का था कि इन सोसाइटियों ने अपने विद्यालयों में प्रवेश के लिए धर्मांतरण की शर्त रखी थी। हिंदुओं को प्रवेश नहीं था, केवल ईसाई मत स्वीकार करने के बाद ही प्रवेश मिल सकता था। अनेक मामलों में इन स्कूलों के अध्यापकों का खर्चा भी पुलियर छात्रों को इकट्ठा करके देना पड़ता था। अब देखिए, अयंकाली तो स्वयं निरक्षर थे, पर उन्होंने सोचा कि ईसाई स्कूलों में जाने से कोई लाभ ही नहीं है, क्यों धर्मांतरण करना, मुझे तो जीवन में किसी विद्यालय में जाने का अवसर ही नहीं मिला। पर पुलियर किसी विद्यालय में जाएं और जाने के लिए उन्हें धर्मांतरण करना पड़े, यह ठीक नहीं होगा। इसलिए सरकारी स्कूलों में पुलियर छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। श्रोताओ, जब तक सरकारी स्कूलों में पुलियर छात्रों को प्रवेश की नीति स्वीकृत नहीं हुई, तब तक आप जानते हैं कि जिन छात्रों में पढ़ने की बड़ी उत्कंठा, इच्छा होती थी, उद्दामता होती थी, वे कैसे पढ़ते थे? जमीन की रेत को बोर्ड बनाकर उस पर उंगलियों को चौक के रूप में इस्तेमाल कर पढ़ने पर मजबूर होते थे। वह इच्छा पूरी करने के लिए अयंकाली ने साधु जन परिपालन संघम की स्थापना की और सरकार को अनेक याचिकाएं देकर दलित बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए अनुमति की मांग रखी। 1907 में त्रावणकोर सरकार ने पुलियर दलित बच्चों को विद्यालय में प्रवेश का आदेश निकाल दिया। आदेश तो निकाल दिया, लेकिन उन तमाम विद्यालयों में जो प्रबंधन व्यवस्था में बैठे हुए जातिवादी अधिकारी थे, उन्होंने इस आदेश का पालन करने में बाधाएं डालनी शुरू कर दी। तब अयंकाली ने सिंह गर्जना के साथ उन तथाकथित बड़ी जाति के सामंतों को ललकारा और कहा कि अगर तुम हमारे बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश नहीं दोगे तो तुम्हारे खेतों में जंगली झाड़ियां उगेंगी, क्योंकि हम तुम्हारे खेतों में काम करना बंद कर देंगे। यह महान घटना थी। वास्तव में इस घोषणा को विश्व की पहली कृषक मजदूर हड़ताल कहा गया। सामंतों और जमींदारों ने अयंकाली का मजाक उड़ाया और कहा कि ये जो मजदूर हैं, ये कैसे काम नहीं करेंगे, अरे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए कहां से लाएंगे। उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले उन पुलियर मजदूरों को मारा, पीटा, धमकाया, लेकिन बिना पोस्टर और प्रचार के मुंह से निकले अयंकाली के शब्दों के आह्वान ने संपूर्ण केरल के खेत खलिहान मजदूरों को एक कर दिया और सामंतों जमींदारों के खेत सूने हो गए। कुछ भी करो, लेकिन हम काम करने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अयंकाली ने पहली मांग रखी कि तमाम दलित मजदूरों को जब तक तुम पक्की नौकरी नहीं दोगे और जब तक यह घोषणा नहीं करोगे कि जिन दिनों बुवाई का कटाई का मौसम नहीं होता है उन दिनों का वेतन भी उन्हें दिया जाएगा, तब तक एक भी मजदूर तुम्हारे खेतों में आएगा नहीं। अयंकाली की अन्य मांगे थी, अपनी मनमर्जी से सामंतों द्वारा मजदूरों का शोषण बंद किया जाए, मजदूरों को झूठे मामलों में फंसाना बंद किया जाए, पुलियरों को नगर गांव में सब जगह आने जाने की स्वतंत्रता मिले, पुलियर बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश मिले। सामंतों और जमींदारों ने अयंकाली का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तुम अब हमारी बराबरी करने लगे हो, हमारे बच्चों के समान अपने बच्चों को अधिकार दिलाने की बात करते हो। उन लोगों ने इन तमाम मांगों का स्वीकार कर दिया। शायद भारत के इतिहास की ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी कृषि मजदूर हड़ताल महीनों चली। स्वतः स्फूर्त अयंकाली सेना अनेक स्थानों पर गठित होने लगी। श्रोताओं, महात्मा अयंकाली द्वारा जो कृषक मजदूरों के बीच में काम किया गया तथा उनको सामाजिक समानता एवं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के पथ पर चलने के लिए तैयार किया, उसके बारे में हमें केरल के प्रसिद्ध विचारक और लेखक श्री आर बालाशंकर बता रहे हैं।
एक प्रकार से जो बोले दुनिया में सबसे पहला कृषक आंदोलन मतलब फार्मर्स एजिटेशन अयंकाली ने शुरू किया था 1907 में। उसके पहले कभी जो है ना उस प्रकार का एक आंदोलन हुआ नहीं था। उस समय उन्होंने डिमांड ये किया था कि जो दरिद्र वर्ग है, जो कृषक है, जो किसान मजदूर है, उसको जो है ना अपना लैंड का अधिकार होना चाहिए, उनको मंदिर बनाने के लिए जगह होना चाहिए, उनका वेजेस जो है सबसे मिनिमम वेज था उस वेज को जो है ना बढ़ाना चाहिए, और एक उसका डिमांड ये था कि हफ्ते में कोई भी एक दिन छुट्टी होना चाहिए, उससे पहले छुट्टी नहीं हुआ करता था। और अयंकाली ने दूसरा एक बड़ा काम किया, उन्होंने जब एक आंदोलन कर रहा था उस समय उनको जगह नहीं मिला, उनको सरकार ने बोला कि इस समय उनको पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो है ना एक बोट रैली किया। बोट रैली माने कायल सत्याग्रह बोलते उसको, मतलब एक लेक के अंदर उन्होंने बोट को इकट्ठा किया, उसको एक दूसरे से बांध के उसके ऊपर बहुत बड़ा एक रैली उन्होंने शुरू किया। तो ये जो बोट रैली जो है इसको बहुत बड़ा एक आंदोलन के रूप ले लिया, और उस समय महाराजा ने उसमें इंटरवीन किया और महाराजा के सामने उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। वो मास मेमोरेंडम जो महाराजा को उन्होंने दिया उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा एक डिमांड ये किया कि मंदिरों को बनाने के लिए सरकार की तरफ से जगह देना चाहिए और जो है हिंदुओं को संगठित करने के लिए कोशिश होना चाहिए। इसमें अयंकाली ने जो उधर का जो है क्षेत्रीय वर्ग है NSS है, नायर सर्विस सोसाइटी, उसके नेता जो मनंत पद्मनाभन के साथ मिलकर चंगना शेरी में एक बहुत बड़ा हिंदू महासम्मेलन किया। एक लिबरेटर के नाते उन्होंने काम किया, लोगों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया, नौकरी करने के लिए उसको मदद किया, और हर प्रकार से उन्होंने अपने समाज को अपने पैर में खड़ा होने के लिए व्यवस्था बनाई।
धन्यवाद बालशंकर जी। जब जमींदारों ने देखा कि मजदूर टस से मस नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने सोचा, हाँ अगर ये नहीं करेंगे हम अपनी खेती खुद करेंगे, अच्छा साहब आइए। तो उन्होंने खेतों में जौ बोने शुरू कर दिए। अब खेती में काम करने की तो आदत थी नहीं, बेमौसम रोपाई से बीजों में अंकुर नहीं फूटे, तेज धूप में काम करने से बीमार पड़ गए, काम कौन करे। और जब एक खेतों में काम करने जाते तो रोटी की पोटली बनाकर उनकी पत्नी कहाँ से खेतों में आती दौड़ते दौड़ते, यह तो उनका स्वभाव ही नहीं था और इस प्रकार की शक्ति भी नहीं थी। अब जमींदार घबरा गए और खुशामत करने लगे। तो दलित मजदूरों ने कहा, पहले हमारी मांग स्वीकार करो, हमारी पगार बढ़ाओ। अब उधर हालत ये थी कि जमींदारों की रसोइयों में भी अनाज कम होने लगा, तो दलित मजदूरों की रसोई में भी अनाज लगभग समाप्त हो गया। तब अयंकाली ने एक तरकीब निकाली जिसे केरल का एक अद्भुत असाधारण अभूतपूर्व नौका सत्याग्रह कहा जाता है, बोट एजिटेशन कहा जाता है। उन्होंने मछुआरों के साथ एक समझौता किया और कहा कि जमींदार और मजदूर परिवार से एक एक व्यक्ति को मछली पकड़ने वाली नाव दी जाएगी और दिन भर में जो भी मछली पकड़ी जाएगी वह दोनों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। अब इस नौका आंदोलन को जो विश्व में भी अनूठा माना जाता है और जिसकी याद में केरल में आज भी अयंकाली नौका स्पर्धा आयोजित की जाती है, उस समय इस आंदोलन ने जमींदारों को पराजय का बोध करवाया। अब उनको लगा, भाई हम तो हार गए, ये लोग तो कुछ तरकीब निकाल रहे हैं। तो वे हिंसा पर उतर आए और मजदूरों के घरों में आग लगानी शुरू कर दी। इससे भड़ककर अनेक दलित मजदूरों ने अयंकाली सेना के माध्यम से कुछ जमींदारों के भी घर जला दिए। स्थिति इतनी बढ़ी कि अंततः जमींदारों को झुकना पड़ा, शांतिपूर्ण समझौता हुआ और पुलियरों के स्वतंत्र आवागमन, सड़कों पर चलने, पगार बढ़ाने और उनके बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश की मांग को स्वीकार कर लिया गया। संपूर्ण केरल में मंदिरों में अयंकाली की जय जयकार हो गई। मार्गों में अयंकाली की जय जयकार करते हुए पुलियरों के जत्थे निकलने लगे। उनके बच्चे स्वाभिमान के साथ माथा ऊंचा करके कंधे पर बस्ता लटकाते हुए खुशी में झूमते हुए विद्यालयों में जाने लगे। अयन के पुत्र काली अब महात्मा अयंकाली हो गए थे।
मरक हो काल में सृष्टि स्वरूप ने, मरक मो मणिंदे पुत्रन से अयन काली, मरक मो काल में सृष्टि स्वरूप।
स्थिति यह थी कि विद्यालयों में पुलियर बच्चों के प्रवेश को सिद्धांततः तो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अनेक विद्यालयों में प्रबंधन के अधिकारी अभी भी बाधा डाल रहे थे। जब महात्मा अयंकाली बलरामपुर में अपने मित्र पुजारी अयन की 5 वर्षीय बेटी को लेकर उरूट अम्बलम विद्यालय में प्रवेश के लिए पहुंचे तो तथा कथित उच्च जाति के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। बाद में तो इसका इतना भयानक असर हुआ कि उसे पुलियर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विषय में हमें केरल के प्रसिद्ध विचारक तथा केंद्रीय केरल विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति श्री जय प्रसाद जी बता रहे हैं।
In the ongoing debate on social justice or the empowerment of the weaker sections of the society, the ideals of Mahatma Ayengali has great relevance. As a social revolutionary, Ayengali led many agitations. But without creating social antagonism, he fought with the evil. For that, he got support from the progressive sections of the society. His method of agitation for social justice is important today because for the emancipation of the depressed classes, he solicited all support from the progressive sections of the society. He gave support to the historic joint agitation of Hindu social movements for social justice of the untouchables, namely the Vaikyam Satyagraha in 1924 and Guruvayur Satyagraha in 1931. His ideals regarding social, educational, economic, political and religious empowerment needs further discussion.
बहुत बहुत धन्यवाद जय प्रसाद जी। तो श्रोताओ, इस आंदोलन के बाद अयंकाली ने जगह जगह अपने पुलियर विद्यालय प्रारंभ कर दिए। कुछ सरकार ने मदद की। इन विद्यालयों के लिए अब भी अध्यापक नहीं मिलते थे। अब जो विद्यालय अयंकाली जी ने प्रारंभ किए उनके लिए तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने अध्यापक के रूप में आना मना कर दिया। अयंकाली की बात, उनकी वेदना सुनकर अंततः एक अध्यापक परमेश्वरम पुल्लई ने विंगनूर के पुलियर विद्यालय में पढ़ाना स्वीकार किया, लेकिन बाकी लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन पर हमला भी किया गया। एक रात तो विद्यालय ही तोड़ दिया गया। अयंकाली ने विद्यालय को पुनः बनाया। 5 बार विद्यालय तोड़ा गया, 5 बार विद्यालय बनाया गया। अंततः उस समय के वातावरण में सामाजिक वीरता दिखाने वाले उन अध्यापक परमेश्वरम पिल्ले जी ने भी अपने प्राणों के भय से नौकरी छोड़ने का उपक्रम किया, लेकिन महात्मा अयंकाली ने उन्हें बिठाया और समझाया, मैं आपको अपने समाज के लोग अंगरक्षक के रूप में लेता हूँ, वे 24 घंटे आपकी रक्षा करेंगे। परमेश्वरम पिल्ले जी मान गए। अब अगली लड़ाई थी पुलियर महिलाओं को कमर के ऊपर कुछ पहनने की अनुमति दिलवाना। महात्मा अयंकाली ने नयटिंकारा नगर में इस कुरीति के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया और पुलियर महिलाओं से कहा कि वे अन्य तथाकथित उच्च जाति की महिलाओं के समान ब्लाउज पहनना शुरू करें। पुनः उनका विरोध प्रारंभ हुआ। अनेक जगह उन पुलियर महिलाओं पर हमले हुए, दंगे हुए, लेकिन अंततः महात्मा अयंकाली अपने लक्ष्य में सफल हुए और पुलियर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की। उनकी संस्था साधु जन परिपालन संगम, विद्यालयों की स्थापना और मंदिरों के प्रवेश के अधिकार के साथ साथ महिलाओं के समान अधिकार और उनकी प्रगतिशीलता के लिए संघर्ष करने लगी थी। 1917 में इसी क्रम में चंगनूर मंदिर में प्रवेश का पहला आंदोलन सफल हुआ, जो संपूर्ण भारत में अपनी किस्म का पहला आंदोलन कहा जा सकता है। लेकिन इसके समानांतर कुछ और घटनाएं हो रही थी। हुआ यह कि हिंदू धर्म में व्याप्त जाति भेद से मुक्ति के नाम पर जो कुछ पुलेयर ईसाई बन गए थे, वे सीरियन ईसाइयों द्वारा अस्पृश्यता का शिकार होने लगे। धर्म तो उन्होंने बदल लिया, लेकिन धर्मांतरण के बाद भी वहाँ उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार खत्म नहीं हुआ। तब धर्मांतरित ईसाई पुलेयर पंबाड़ी जॉन जोसेफ, उन्होंने सीरियन क्रिश्चियन चर्च की शिकायत ब्रिटिश संसद में की और चर्च के भीतर कथित उच्च जाति के ईसाइयों के दमन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। महात्मा अयंकाली ने उनको भी समर्थन दिया और सरकार से सिफारिश कर पंबाड़ी जॉन जोसेफ को प्रांतीय विधान मंडल का सदस्य बनवाया। 1916 तक आते आते महात्मा अयंकाली अनेक विद्यालयों की स्थापना कर चुके थे और उनका आंदोलन साधु जन परिपालन संगम गांव गांव और नगर नगर में फैलने लगा था। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से दलित स्वाभिमान और अधिकारों के लिए साधु जन परिपालनी पत्रिका भी प्रारंभ की, जो संभवतः अपने वर्ग में देश की पहली दलित पत्रिका थी। शनै शनै निरंतर प्रवास, अनवरत संघर्ष, उनका शरीर थकने लगा था। 1941 आते आते महात्मा अयंकाली को गहरा दमा हो गया और 18 जून 1941 को वह दिन आया जब महात्मा अयंकाली शांत मुद्रा में अपने प्रभु से मिलन के लिए यह नश्वर शरीर छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हो गए। महात्मा अयंकाली जिस महान विरासत को छोड़कर गए, उसकी विराटता और उनके जीवन संघर्ष पर एक फिल्म भी बनी है और भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया है। महात्मा अयंकाली भारत की सभ्यता, संस्कृति और आत्मा के सच्चे प्रतिनिधि थे। उनका जीवन हम सबको समानता, समरसता एवं सामाजिक न्याय का संदेश देता है। मित्रों, यह कथा थी एक सामाजिक वीर, क्रांतिकारी, परिवर्तनगामी महात्मा अयंकाली जी की। आपको कैसी लगी यह कथा, इसके बारे में हमें कृपया जरूर बताइएगा। आप जानते ही हैं, फेसबुक पर हमारा पता है दक्षिण सेतु, तथा ईमेल है air.dakshinsetu@gmail.com। चिट्ठी लिखना ना भूलिएगा। अगले संस्करण के लिए वणक्कम नंदरी, धन्यवाद, नमस्कार।
जनगण जोड़े भारत के मन से, वीर तपस्वी कवियों से परिचय का कथा कथन है। संस्कृति और शौर्य भरा ये अद्भुत स्वर मंथन है। दक्षिण से तू जनगण जोड़े भारत के मन से।
अभी आप सुन रहे थे श्रृंखला कार्यक्रम दक्षिण सेतु। शोध, आलेख और सूत्रधार तरुण विजय। संगीत सहयोग अनुराग उपाध्याय। प्रस्तुतकर्ता अभिनय श्रीवास्तव। हमारा फेसबुक पेज है दक्षिण सेतु और ईमेल आईडी है air.dakshinsetu@gmail.com। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।